ध्यानञ्जन सलाके चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महापदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनामे गौरत्तिजे गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै सदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय सदभक्ताय नमो यं प्रव्रजन्तमनुते समपेतकृष्यन् कायनो विरहकाचर्याः पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेतु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानुतोऽस्मि तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति वेद्यै राधे तन्मय माम्। द्वितीय अध्याय सप्तम द्वितीय भाग सप्तम अध्याय श्री परीक्षित महाराज जी अपनी मैया से पूरा बृहद भगवतामृत सुनाने के पश्चात उसके सार अंग भक्ति रसायन का वर्णन कर रहे हैं। उसमें श्रीमद् भागवत के मुख्य मुख्य श्लोकों को जो गोपियों से या प्रेम से संबंधित है उसको यहाँ पर उद्धृत करते हुए बतला रहे हैं अपनी मैया को। जिस प्रेम के लिए ये बतला रहे हैं यह प्रेम साध्य प्रेम है, साधन नहीं। यह प्रेम साध्य प्रेम, तब उसका यह वर्णन कर रहे हैं, तब उसका इसलिए वर्णन कर रहे हैं कि उसके प्रति यदि किसी को लोभ उत्पन्न हो तो उसके अनुगत्य में वो भजन कर सकता है। इसलिए अपनी मैया को निर्लज्ज होकर के भी ये बतला रहे हैं, ये चीजें जो बतलाना नहीं चाहिए। इसी से प्रेम में भी साध्य प्रेम के भी तीन स्थितियां या तीन अवस्थाएं हैं। एक मंद प्रेम, भाई शब्द को मत कहो, उधर बैठो उधर बैठो, ऑफिस तक पहले से बैठे प्रेम, मध्य प्रेम, प्रौढ़ प्रेम। प्रौढ़ प्रेम भी तीन प्रकार के, ये सभी तीन तीन प्रकार के। पहले मंद प्रेम किसको कहते हैं, पहले प्रौढ़ प्रेम से समझ। प्रौढ़ प्रेम वह है जब नायक नायिका या प्रिय एवं प्रियतम दोनों के वियोग को सहने में असमर्थ होते हैं, असहिष्णु हो जाते हैं, सह नहीं सकते। उस समय इसको कहते हैं प्रौढ़ प्रेम। जैसे कृष्ण ने बंसी वादन किया, ये लोग अपने घर में संपूर्ण रूप से अपने अपने कार्यों में लगी हुई थी, यहाँ तक कि अपने पतियों की सेवा कर रही हैं, रसोई बना रही हैं, आभूषण पहन रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, और यही बंसी वादन हुआ और वैसे ही आकर्षित होकर के सब कुछ भूल करके पागल नहीं होकर के उद्माद नहीं बन करके अपना धैर्य, गुरुजनों का आदेश निर्देश सब कुछ भूल कर दौड़ सकती। कपड़ा पहनने का भी सुध-बुध नहीं रही, लोक लज्जा धर्म सब कुछ उनका छूट गया। इसको कहते हैं अधैर्य में होकर के सब कुछ जलांजलि दे दी, सह नहीं। और जिस प्रेम में वियोग में या मिलन के लिए उत्कंठित होने पर बड़ी कठिनता से क्लेश से धैर्य धारण कर सकते हैं, ये दोनों परस्पर जब धैर्य धारण कर लेंगे तो फिर मिलेंगे नहीं, इसलिए बड़ी कठिनता से किंतु धैर्य धारण कर लेते हैं। वो क्या है? मध्यम कोटि का। पहले में धैर्य धारण ही नहीं होता, दूसरे में बड़ी कठिनता से किंतु धैर्य धारण होता। और मंद प्रेम कौन सा है? जिसमें वो भी मंद मत समझो कि साधारण ही है, वो भी उच्च कोटि का होने पर भी उनसे मध्यम और प्रौढ़ वाले बहुत उत्तम है। वो मंद भी ऐसा कृष्ण में अत्यंत अधिक अनुराग है, किंतु साधारण का वहां पर कोई विचार ही नहीं है। ये सब मुख्य गोपियों के लिए विचार होता है। तो क्या बतला रहा था बीच में मंद, उसमें जो विरुद्ध की गोपियां हैं विजातीय विपक्ष वाली, उनके कुछ देख करके भाव मुद्रा भंगिमा देख करके उनके प्रति क्षुब्ध हो जाती, उसमें कृष्ण के प्रति भी कुछ भावना प्रकट होती है और उसमें ईर्ष्या के कारण क्षुब्ध होने के कारण कृष्ण के सेवा को, कृष्ण की सेवा इत्यादि को या कृष्ण के दिए हुए किसी उपहार को माला को भी फेंक देती है, अनादर कर देती है। उनका विस्मरण भी हो सकती है कुछ क्षण के लिए, जब आवेग में रहेंगे विस्मरण हो जाता है, उस वियोग को आसानी से सह लेंगे, तो इसको कहते हैं मंद प्रेम। गोपियों का प्रेम कैसा है? उनमें भी प्रौढ़ है। प्रौढ़ भी अब तीन प्रकार के, मध्य और प्रखर प्रबलतम। ये महाभाव वाली गोपियां हैं, वो तो प्रेम की बात हुई, इसके बाद में स्नेह आएगा। वो पहले प्रेम की बात, प्रेम मैंने प्रेम भंग का कारण उपस्थित होने पर भी प्रेम क्रमशः बढ़ता जाएगा तो वो प्रेम है। इसी को गुरु के और वैष्णव के प्रति लाओ, गुरु के प्रति वैष्णव के प्रति क्रोध उत्पन्न होने का कारण उपस्थित होने पर भी क्या करेंगे वो, उनका प्रेम उनकी सेवा और बढ़ती जाएगी तब तो वो प्रेम है। और अवज्ञा उसमें प्रकट जो समझो ये महाअपराध है। महाप्रभु जी ने जगदानंद के दिए हुए तैल भंड को ग्रहण नहीं किया अपनी सेवा में, तेल ले आए थे बहुत सुंदर जो उसके लगाने से नारायण तेल शांत तीर हो जाता है। उन्होंने कहा जगन्नाथ जी में प्रदीप जला दो, खबरदार हमारे पास में मत लाना। महाप्रभु जी के सामने उन्होंने घड़े को लेकर थे और उनके सामने पटक दिया, फूट गया और पैर पीटते हुए भूमि को पैर से अपने घर में चले गए और दरवाजा बंद कर दिया। बोले नहीं, दो दिन हो गया तीन दिन हो गया खाए नहीं पिए नहीं, दिन भर रात भर रो रहे हैं। महाप्रभु जी यह सुन करके समुद्र स्नान करने के लिए जा रहे थे, रास्ते में उनके पास में गए और पहुंच करके बोले, जगदानंद आज बड़ी भूख लगी, 3 दिन खाया नहीं, मैं अभी जा रहा हूँ स्नान करने समुद्र में और वहां से लौट करके तुम्हारे यहाँ प्रसाद पा करके तब वहां पर लौटूंगा अपने आश्रम में। और ये चले गए बिना किसी दरवाजे खोलने की प्रतीक्षा में। और वो सुन करके तुरंत उठ करके स्नान किया और मिनटों में रसोई बनाई सुंदर सुंदर। और महाप्रभु जी लौट करके आए, तब तक 32 अंगिठिया केले के पत्ते पर, मैंने खूब बड़े केले के पत्ते के ऊपर में तरह तरह की सब्जियां, तरह तरह की सब चीजें परोस करके और प्रतीक्षा करने लगे। फिर महाप्रभु जी आए। महाप्रभु जी ने कहा जी हम पहले नहीं खाएंगे, हमारे साथ में जगदानंद पाए सब पाए। जगदानंद जी ने प्रभु जी के सेवक गोविंद को कहा, हम दोनों पीछे पालेंगे, इनको कह दो जैसे हम अपने आप नहीं बोल रहे। महाप्रभु जी खा करके थोड़ी देर के लिए बैठ गए, फिर दोनों ने प्रसाद पाए। यहां पर क्रोध है, मान है, किंतु महाप्रभु की सेवा की विस्मृति नहीं हुई है, महाप्रभु का स्मरण विस्मृत नहीं हुए हैं, उनके प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं आया, ये हमारी बात उन्होंने माना क्यों, इसलिए हम वहां से चले जाएंगे, अवज्ञा करेंगे, ये नहीं कर सकते, ये प्रेम का निशान है। आज जहां प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है, साधारण भक्ति और श्रद्धा भी नहीं है, वहां पर मर्यादा भंग करेगा और अपराध से मर करके भक्ति से सदा के लिए च्युत हो जाएगा। इस चीज को अच्छी तरह से समझो, वैदिक भक्ति मर्यादा युक्त है, रागानुगाय इससे बहुत ऊपर की चीज है, जबकि ये सब चीजें में हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं इसके बाद में, इसलिए इसमें सबसे भयंकर सबसे सुगम मार्ग भक्ति का क्या है, भक्ति के लिए सबसे अनुकूल चीज क्या है, साधु संघ, साधु संघ, साधु संघ सर्वशास्त्र को है, लो मात्र साधु संघ साधु, बिना साधु संघ के वैष्णव संघ के भक्ति कदापि नहीं हो सकती। इसमें रस पच करके कोई मर जाए, हजार नाम करे, हजार सब कुछ करे, साधु संघ वैष्णव संघ नहीं होगा तो भक्ति कदापि नहीं हो सकती है, चाहे कोई लाख चेष्टा करे। सबसे पहले साधु संघ पर, इसलिए साधु सबसे बड़ा विरह क्या है, सबसे बड़ा विरह कृष्ण भक्त के बिना कोई विरह नहीं, इससे बड़ा कोई, इससे भक्ति बढ़ती है। अच्छा, इसके भी परी तब देखो, सबसे बड़ा महाभयंकर अपराध क्या है, सबसे बड़ा भयंकर अपराध जिससे भक्ति नष्ट हो जाती है, गुरु के प्रति अवज्ञा इत्यादि, शास्त्र निंदन इत्यादि उतना नहीं है जितना कि सबसे पहला नंबर का क्या सताम, गुरु नहीं कहा, गुरु नहीं कहा। इसे साधु संग से भक्ति होगी और साधु संघ के विपरीत आचरण करने से भक्ति संपूर्ण मूल रूप में उखाड़ करके फेंक देगी, है ना। यदि अपराध हस्ती माता उठे, उपार अगर छिंडे तार सूख जाएगा, समूह उखाड़ करके फेंक देगी। इस चीज को हम लोगों को सब समय स्मरण रखना चाहिए, भक्ति ही साधु संघ ही भक्ति का मूल जन्म है, इसको भी अच्छी तरह से समझना। साधु संघ जितना सरल है और उसके प्रति किया हुआ अपराध भी कितना कठोर है, इस चीज को समझना चाहिए। अच्छा, ये वैष्णव अपराध कनिष्ठ के प्रति, मध्यम के प्रति या उत्तम अधिकारी के प्रति होता है, किसके प्रति होता है, हाँ? किसके प्रति होता है? उत्तम अधिकारी तो अपराध करता नहीं है, किंतु उसके प्रति करेंगे तो होगा ही, किंतु यहां पर जो साधु निंदा इत्यादि कहा गया किसके लिए, हाँ? जिन्हें नाम आश्रय ग्रहण कर लिया, चौझाई ये समझो, एकांतिक कृष्ण के प्रति जिनकी भक्ति है एकांतिक, और नाम के प्रति रुचि है जिनकी, कृष्ण की लीला कथाओं में रुचि जिनकी हो गई, चाहे हजार लाख अवगुण हो, लाख अवगुण हो, कोई बात नहीं, किंतु नाम के प्रति, कृष्ण कथा के प्रति, एकांती रूप में जिनको अनुराग हो गया है, अनुराग वो नहीं श्रद्धा है, उनको यहाँ पर वैष्णव समझो। देखो सबसे श्रेष्ठ ये ब्राह्मण है, बतलाया गया है ना, इन ब्राह्मणों में वेदज्ञ ब्राह्मण क्षत्रिय जाति इससे हजार गुना श्रेष्ठ है। अच्छा, इन लोगों से भी वेदांत पारक जो वैष्णव है वो लाख कोटि गुण से, इन लाख कोटि वेदांत पारक पारंगत ब्राह्मणों से भी विष्णु भक्त वाले, विष्णु भक्ति वाले जो हैं वो श्रेष्ठ हैं। और इन विष्णु भक्तों में से भी कौन श्रेष्ठ हैं? एकांतिक विष्णु भक्त। और एकांतिक विष्णु भक्त में भी कृष्ण के प्रति जो भक्त हैं वो, और इनमें भी जो नाम परायण और भक्ति युक्त जो है विशेष रूप में एकांतिक भक्ति, उनमें हो सकता है कोई दोष हो, कोई बात नहीं, किंतु कोटि कोटि वैदव्य ब्राह्मणों से, नित्यज्ञ ब्राह्मणों से, नित्यज्ञ साधारण भक्तों से वो श्रेष्ठ है। इस चीज को समझ करके उनको भी वैष्णव संत में रखो, इसे उनके प्रति भी किसी प्रकार की अवज्ञा, किसी प्रकार का तुच्छ ताच्छल्य बोध न हो। कोटि करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद में ये स्थिति उनकी आई है और हम भी उसी स्थिति में आए हैं, इस चीज को समझो। जो इतने करोड़ों करोड़ों जन्मों का जो साधन भजन है, एक वैष्णवों की निंदा से, अवज्ञा से वो सब समाप्त उखाड़ करके फेंक, इसलिए उसका भयंकर फल भी है। अब विशेष करके तीर्थों में वे भी ब्रज में वो वज्रलेप के समान वो हो जाता है। खूब सावधानी से विचार करके ये सब चलना चाहिए। तो हम बतला रहे थे प्रौढ़ मध्य मंद प्रेम गोपियों का, कहाँ वो प्रेम और कहाँ हम लोग, उसका सुनने का अधिकारी कौन है, यही समझो। तो इसलिए शांत चित्त होकर के हम लोग इन चीजों को श्रवण करेंगे, अनुधान करने की चेष्टा करेंगे, जहाँ की माया के प्रति कहीं भी लोभ नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है, अर्थ स्त्री संग प्रतिष्ठा किसी प्रकार की भी कोई वासना हृदय में नहीं रहेगी, एकांतिक रूप में इन्हीं सब का चिंतन लीप और ये श्रवण कीर्तन होगा, सब से ये चीजें आएंगी। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि तुम लाख चेष्टा करो, पढ़ करके नहीं होगा, साधन भजन करो, साथ साथ में साधु संघ में हरी कथा सुनो और तुम्हारा चित्त जितना ही माया से ऊपर चलता जाएगा उतना ही चीजों को अनुभव कर सकोगे। केवल पढ़ने से लाख दिन रात पढ़ते रह जा रच पच जाओ तब नहीं होगा, यह होगा वैष्णव की कृपा से कुछ साधन सापेक्ष, जितना ही माया का मल दूर होता जाएगा, चित्त बल प्रकाशित होता जाएगा, हम उनको अनुधावन या अनुभूति कर सके। अन्यथा लाभ कैसा करो नहीं होगा। माया की साधारण एक चीज हम जानते हैं कि क्रोध या माया की आसक्ति यही नहीं जा रही है, और ये चीजें कहां से आएंगी? ये परम दुर्लभ हम लोगों का सांप्रदायिक संपत्ति है, चैतन्य महाप्रभु इन चीजों को ले आए, सनातन गोस्वामी उस चीज को वितरण कर रहे हैं, इसलिए इसको ऐसे नहीं समझ सकते। जब तक ये वृत्तियां रहेंगी कैसे समझेंगे हम? दो वृत्तियां एक साथ, दो तलवार एक में नहीं रहती है तो ये दो वृत्तियां कैसी रहेंगी? अभी तो हम लोग ये भी नहीं समझ पाते हैं, क्रोध मन की वृत्ति है, ये ठीक है ना? क्रोध किसकी वृत्ति है? मन की वृत्ति माने माइक वृत्ति है, माया की। अच्छा, एक आदमी अभी नाना प्रकार के अनर्थों से भरपूर है किंतु हरि नाम करता है, मैं हरि नाम करूंगा, अच्छा ये वृत्ति किसकी है? माया की है ना? किसकी है? ऐसा मत सोचे, अभी मन से सोचा ये सांसारिक वृत्तियों के प्रति ये क्रोध आया हमको, किसी स्त्री के प्रति, किसी के प्रति हमारा कुछ, हमारी कुछ आसक्ति हुई, उनके प्रति कुछ जैसा भी जड़ीय काम एक पैदा हुआ, ये मन की वृत्ति। और उसी वृत्ति से हम सोच रहे हैं कि हमने भी ये सोचा कि हमारा मंगल कैसा होगा, ये भगवान का नाम करने से होगा, तब हरि नाम करने लगे। ऐसे मालूम होता है कि एक ही चित्त की ये दो वृत्तियां हैं, ये माइक प्रति आकर्षण और भगवान का जो नाम कर रहे हैं, किंतु मत समझो ऐसा गलत है, ये गलत है। माया की वृत्ति नहीं, भगवान को नाम लेने की वृत्ति कहां से आएगी? आएगी सब समय माया में ले जाएगी। और भगवान का नाम करूंगा इससे हमारा कल्याण होगा, ये शास्त्रों के विचारों सुन करके, गुरु जी के विचारों को सुन करके, वैष्णवों के विचारों को सुन करके, शास्त्रों में देख करके ये एक वृत्ति आई है कृष्ण सेवा की वासना। ये वासना माइक नहीं है, किंतु मालूम पड़ता है कि एक ही मन से हम ऐसा सोचते हैं वैसा है, किंतु सर्वथा पृथक है। ये वृत्तियां ही दो हैं, एक स्वरूप शक्ति की वृत्ति और एक स्वरूप शक्ति की वृत्ति को जितना हम अनुसरण करेंगे उतना परमार्थ की तरफ में अग्रसर होंगे, और माइक वृत्ति का अवलंबन करेंगे तो काम क्रोध लोभ मद मोह माश्चर्य इत्यादि होकर के मरेंगे। इस तरह से दोनों का प्रभेद समझ करके भगवान की भक्ति में बढ़ने की चेष्टा हम लोगों को करनी चाहिए। उसमें आया है अन्नाभिलाष लास्ता सुन्नम श्लोक में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका में, तन मन वचन आदि की चेष्टाएं, ये क्या है? प्रवृत्ति परक और एक निवृत्ति परक है। निवृत्ति परक क्या? अपराध आदि से रहित होना, ये दोनों आवश्यक है, दोनों मिलकर के तब फिर भक्ति बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि एक वृत्ति को तो ये बढ़ रही है और दूसरी कुछ उसके लिए किया नहीं तो नहीं बढ़ेगी, इसलिए दोनों पर आवश्यक बल दिया गया है। तो यहां पर गोपियां किस भाव में है ये तो प्रेम की अवस्था बतलाई, जिस प्रेम को कहते हैं प्रेम कौन, प्रेम के नष्ट हो जाने का कारण उपस्थित होने पर भी जहां पर प्रेम नष्ट नहीं होता वो अप्राकृत प्रेम है। अब यह प्रेम और परिपक्व होकर के जब उठता है और उसमें हृदय सरस होने के कारण द्रवित जब होने लगता है तो उस प्रेम को कहते हैं, परिपक्व प्रेम का नाम है स्नेह। वह स्नेह भी दो प्रकार का, धृत स्नेह मधु स्नेह। मधु स्नेह भी तीन प्रकार का, तब इसके बाद में तब फिर स्नेह मान, तब प्रणय, तब राग अनुराग, तब महाभाव। इस महाभाव में अवस्थित ये गोपियां हैं, उनके इस प्रेम को बतलाया जा रहा है। उस समय उसका लक्षण यह है, प्रौढ़ प्रेम का भी बतलाया ना, विच्छेद सहा नहीं जाएगा, धैर्य भी इससे वो च्युत हो जाएगा। इसके लिए वो दिखला रहे हैं, गोपियां भाव नेत्रों से देख रही हैं क्या, दिव्यो विमान गत स्मरण सारा भ्रष्ट पशुन कबरा मुहूर् विलिप्त। पतियों के साथ में विमान पर चढ़ी हुई आकाश में विचरण करने वाली ये देवियां पतियों के साथ में हैं, और कृष्ण के मधुर बंसी मोहन बंसी नाद को श्रवण किया और कृष्ण के सुंदर रूप को निरीक्षण किया और देखते ही विवश हो गई। उनके फूल जो कुकेशों में लगे हुए थे वो चित होकर के एकदम धीरे धीरे गिरने लग गए, उनकी नीली खुल गई, नीचे गिरने लग गई, उनको तन मन का सुध ही नहीं रहा और वो गिर गई अपने पतियों की गोद। ये कौन देख रहा है? गोपियां भाव नेत्र से देख रही हैं। वहां इतना हुआ कि नहीं, ये तो घर में बैठी हुई हैं, घर के अंदर, और जहां पर कृष्ण गोचारण कर रहे हैं वहां की ये बात हो रही है, या राष्ट्रस्थली की, या कृष्ण को देख करके वेणुवादन सुन करके देवियां आकाश से इनकी ये अवस्था हो रही है, भाव नेत्र से देख रही हैं। तात्पर्य क्या? अप्राणी में भी, प्राणी में भी, कीट पतंगों में और पशु पक्षियों और वृक्ष लताओं में भी अपने प्रेम को आरोप कर और ये भाव नेत्र से उनमें भी इस चीज को देखती हैं और अपने को अत्यंत तुच्छहीन दीन ही मानती हैं और उस योनि में जन्म लेने की स्पृहा जागृत हो जाती है। किनको? इन गोपियों को। यदि देवियों से और गोपियों की तुलना की जाए, गोपियां कोटि जन्म में भी, कोटि करोड़ों जन्म में भी ऐसा साधन भजन करके इस स्थिति को नहीं प्राप्त कर सकती है। किस वो देख रहे आरोपित हो रहा है यहाँ, ये गोपियों की महिमा है जो ऐसा कर रही है। अरे उसको तो छोड़ दो, कृष्ण चले जा रहे हैं जिस पृथ्वी के जिस भाग पर, जिस बालू या रेती या मिट्टी पर कृष्ण के चरण चिन्ह पड़े हुए हैं, कहते कि आहो इन धूलियों का कितना सौभाग्य, कृष्ण पर चरण रख रहे हैं पृथ्वी के ऊपर में, आ पृथ्वी का कैसा सौभाग्य। यदि दुर्भागा यदि जगत में है तो हम मर करके वही पृथ्वी के अंदर में यही स्थान होती जिसके ऊपर में कृष्ण अपना चरण, ये पृथ्वी के उस धूली कणा का महत्व है ना गोपियों का, गोपियों के प्रेम का महत्व है, गोपियों के प्रेम की ये महिमा है। यहां पर गोपियां अपने घरों में बैठी हैं, भाव नेत्र से देखे गोचारण करते हुए कृष्ण बाहर में गए हैं, एक वन से दूसरे वन में अपने सखाओं के साथ में, बलदेव के साथ में, कोटी कोटी गायों के साथ में वो जा रहे हैं, पुष्प खिले हुए हैं, वन लता तरु इत्यादि विकसित हो रहे हैं, मानो कृष्ण को देख करके आनंद से भर गए हों, रोमांचित और होकर के हंस रहे हैं, खिल रहे हैं, फलों से भरपूर हो गए हैं। और उसका ये वर्णन कर रही हैं किसमें, युगल गीत में, सरसि सारस हंस विहंगा चारु गृत हित चेतसि एत्य हरि मुपासत जे चत चित्ता हंस मिलित धृतो धृत मौना। सरसि सारस हंस विहंगा, गोपियां घर में बैठी हुई, ये गोपी गीत नहीं है, बेणु गीत नहीं है, ये जुगल गीत है, उससे बेणु गीत से बेणु गीत पूर्व राग का और ये है प्रौढ़ राग का। कृष्ण मिल चुके हैं, प्रेम और भी परिपक्व हो उठा है उस समय में ये देख रही हैं। परीक्षित महाराज जी अपनी मैया से इसी का वर्णन कर रहे हैं और इधर में सनातन गोस्वामी और उधर में सुखदेव गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं परीक्षित को।
ये दूरव भाव के लक्षण में उसको दिखाया, पहले विरह में जो था उसका विकल्प क्षण क्षण कल्प पर एक क्षण कल्प के समान के रूप में प्रतीत होता है, अब इसमें दिखा रहे हैं कल्प के क्षण कल्प पर कल्प क्षण पर एक कल्प काल भी एक क्षण में बीतता है।
हम लोग थोड़ा अनुभव करते हैं जबकि बीमार पड़ जाते हैं, रात में नींद नहीं आती है और दर्द के मारे कराते हैं, प्राण गया रात ही नहीं बीती, घंटी देखते हैं कि घड़ी वही वहीं पर स्थिर है, चलती नहीं, सारी रात इतना बड़ा भारी, यदि दम्भे का रोगी हो तब देखो सांस नहीं आ जा रहा, मर रहा है, उस समय में खन कल्पत्व हो जाता है, गोपियां का उनसे कोटि गुण हो जाता है। गोपियां कह रहे हैं बड़े ही आश्चर्य की बात, सरोवर के जितने भी सारस, सारस माने क्या है, सौरस रसे सहित, सारस कौन सारस, ब्रजरस सहित, ये सारस है, हंस नीर और क्षीर को अलग करने वाले, प्रेम और दूसरे चीजों को अलग करने वाले बड़े प्रेमी जो हंस हैं और दूसरे जो विहंगम हैं पक्षी, कृष्ण के मनोहर मोहन बेणु गीत को सुन करके हृत चित्त उनका चित्त हरण किया जाता है, हो जाता है, अर्थात चित्त माने शुद्ध बुद्ध वो खो देते हैं और निकट में आकर के कृष्ण के समीप आकर के संयत चित्त से, संयत माने चित्त को समाहित कर सब विषयों से, आंखों को बंद कर चुपचाप हरि की उपासना करते हैं, जिन्होंने चित्त चुराया है जिस हरि ने उसी हरि की उपासना करने, उप आसन उपासना नीचे निकट बैठ करके कैसी उपासना, ये तो शरीर से ऊपर आ गए नीचे, और मन से कैसे संजित हो संयत होकर के सब प्रकार से उन्हीं की चिंता करना। ऐसे यदि हम लोग भजन करें तब तो भजन है, और ऐसा नहीं कर सकते हैं संयत होकर के तब तो भजन नहीं, इसलिए हमारी ऐसी दुर्दशा है। यदि थोड़ा तबीयत खराब हो गई तो ये इन कथाओं को नहीं सुनकर घर में पड़े रहेंगे, चल रहे हैं फिर रहे हैं इधर उधर की बातें कर रहे हैं कोई भी बात नहीं, किंतु कथा में बैठ करके ये सुनने में रुचि नहीं आएगी, और इधर उधर जाकर के दक्ष की बकवास में सुनने में जमे चित्त लग जाएगा। आज जिनको इधर में रुचि है चाहे मर रहे हैं किंतु जैसे तैसे उसको सुनने की चेष्टा करें, ये तो रुचि का लक्षण। साधन अभी साधन के निम्न भूमि की, जिनकी ऐसी रुचि नहीं हुई तो वो क्या भजन साधन करेंगे, ऐसी रुचि होनी चाहिए। करें ये अरे जरा हंस जैसे सारस जैसे दूसरे दूसरे जो पक्षी हैं वो वैसे भी तो बनो, गोपियां नहीं बन सकते, गोपियों का भाव होना बड़ा भारी कठिन है। अरे भौरों जैसा तो बनो, कोकिल नहीं बन सकते नहीं कुहक सकते, किंतु तुम देखो तो ये सारस हैं बनके, बहुत दूर हैं निकट नहीं है, चल रहे हैं और कृष्ण गोचारण करते हुए जा रहे हैं। अब सीता ने देखो ये क्या कह रहे हैं, कीट पतंगों की से अतः तो भौरों से और दूसरे दूसरे जो छोटे छोटे कीड़े हैं ये पक्षी श्रेष्ठ है। पक्षी लोग बहुत से मन देखकर के इधर सुनो उधर घर में मत चित लगाओ, ये पक्षी श्रेष्ठ है। ये कीड़े मकोड़े आकाश में नहीं उड़ सकते, इनकी चेतना जरा कम होती है, और ये पक्षी जो हैं कौन से सारस जो रस ग्रहण करने में प्रवीण हैं। सारस क्या करते हैं, सारस बड़े बड़े पक्षी होते हैं, उनकी लंबी लंबी गर्दन होती है, वो सारस जल के पक्षी हैं किंतु जल में नहीं रहते, जल में तैरते हैं और कमल की जो पराग है क्या कहते हैं उसे, परागे तो कहते हैं मृणाल, छोटे छोटे बड़े कोमल सुगंधित और बहुत सार वस्तु को वो ग्रहण करते हैं, कमल के भी सार को ग्रहण करते हैं। कमल तो अपने आप स्निग्ध सुंदर कोमल सुशीतल सब उसमें गुण है। नींद आ रही है, नींद की दवा दें दें हैं? जिसको नींद की नींद आ रही है उसकी अभी दवा हम दे देते हैं, स्टैंड अप ऑन द बेंच कर देंगे तब सब जाएंगे। अभी नाम नहीं बतला रहा हूँ जो कौन सो रहा है कि कौन सो रही है, नाम लेकर के खड़ा कर देंगे तब समझ जाएंगे, इसलिए सावधानी रहिए, खूब साठ से बैठिए। तो ये पक्षी श्रेष्ठ हैं, विशेषतः ये कृष्ण के समीप नहीं आते, जैसे सुखसारी हैं ये कृष्ण के सब समीप आ सकते, किंतु जल में विचरण करने वाले जो पक्षी हैं वे उड़ भी सकते हैं जैसे सारस हंस, और कुछ जो हैं वो जल ही नहीं केवल रहते हैं, पंडुबी है ना वो उसमें भी पंख होते हैं थोड़ी सी उड़ सकती है, आकर के काली सी जब ढुक गई थी घुस गया और सरोवर के दूसरे छोर पर उड़ निकल
जाएगी।
रात में उसी को पुररी कहते हैं ना क्या, पुररी दूसरे, तो ये इन पक्षियों के डैने भी होते हैं, पक्षी जल में नहीं रहते किंतु जल में उतरते हैं दूर से आकर के, हंस भी सारस भी। तो ये यहां ये जलचर प्राणी हैं, इनका भाव देख करके गोपियां वर्णन कर रही हैं। देखो तो ये पक्षी भी कितने सौभाग्यवान हैं, इनको कोई मना करने वाला नहीं है। सारस होगा तो सारसी भी होगी, हंस हो गए तो हंसनी भी होगी, बत्तख होंगे तो बत्तखी भी होंगी, पंडुक तो वो पंडुकी भी होगी। स्त्री पुरुष दोनों कृष्ण की बंसी की तान सुनकर मोहिनी और जहां से वहीं से कृष्ण के समीप में आ जाते। यहां पर गोपियां पूर्ववत पूर्व की भांति दिवा विरह दुख की शांति के लिए, उनको दूर करने के लिए परस्पर भगवन लीला का गान कर रही हैं। परस्पर दिवा विरह दुख क्यों, दिन सबके लिए सुखकर है किंतु गोपियों के लिए दुखकर है, क्योंकि मिलन नहीं इसमें होता है। सवेरे उठते ही गायों को बछड़ों को संभालने के लिए गोष्ठ में चले जाते। इसके बाद में सखाओं के साथ में मल्ल क्रीड़ा में लग जाते हैं। उसके बाद में यशोदा जी कृष्ण बलदेव को बुला करके घर में स्नान करा करके भोजन के लिए बैठाती हैं। उसमें हजारों सब सखा लोग। इसके बाद में वन प्रदेश में कृष्ण जाते हैं। उस समय जितने ब्रज के लोग हैं वो सब लोग कृष्ण के साथ में जाने लगे। यदि नंद यशोदा और मातृ और पितृ स्थानीय लोग यदि लौट भी आए कुछ दूर पहुंचा करके तो ये गोपियां बाकी रह जाती हैं, वो जल्दी नहीं छोड़ना चाहती। किंतु उस समय भी कृष्ण के लाखों लाखों सखा बलदेव प्रभु जी साथ में रहते। इसके बाद में वन में प्रवेश कर जाते, गोपियां लौट आती हैं और विरह में वियोग में दुख अनुभव करती हैं और एक दूसरों से यह वार्तालाप करती हैं। शाम को यदि लौटे भी कृष्ण तो लाखों सखा ग्राम वाले आ गए और उस समय में गोपियां उनको अपने गोपियां मैंने मातृ स्थानीय गोपी अपनी गोदी में लेकर के कृष्ण को दुलार लाड़ प्यार करने लग जाती है। उस समय गोपियां यदि देख भी चले तो बहुत दूर से। इसके बाद में कृष्ण ने स्नान इत्यादि किया, फिर गऊओं को संभालने के लिए चले गए और फिर वहां से आकर के प्रसाद पाया नंद बाबा और सब उपानंद सबके साथ में सखाओं के साथ में विश्राम करने चले गए। अब तक उनको करीब करीब 16-17 घंटे गोपियों से उनका कोई भी मिलने की संभावना नहीं थी, इसलिए दिवा दुख। यदि दिवा दुख है तो तब कुछ बाकी रह गया ना, क्या बाकी रह गया तो उसका यहां पर उल्लेख नहीं किया, उसको अवहित्था पूर्वक उसे छिपा दिया। दिवा दिरा दुख शांति के लिए भगवन लीला का गान करने लगे, आविष्ट होकर के ऐसे आविष्ट हो गई कि भाव नेत्रों से सब कुछ देख रही हैं, ये क्या क्या कृष्ण वन में किस वन में कैसे जा रहे हैं, कैसे पशु पक्षी इत्यादि का सम्मान ग्रहण कर रहे हैं, ये सारी चीजों को यथावत वो ऐने में अपने रूप के सामने सबको देख रही हैं। किसी भी व्यक्ति को साधारण भी कृष्ण के प्रति हरि कथा में रुचि हो तो जो सुने हुए विषय को वो अपने आप चिंतन आएगा, चाहे वो सुने जा रहा हो या बैठा हो या ये आएगा। और यदि नहीं हुआ तो ये सुनना बेकार है, उन लोगों का सुनना बेकार है जो माया से भरे हुए काम क्रोध लोभ मह और संसारिक माया ममती अपने हृदय में भर रखा है और सुना और यहां से उठते ही जो सुना था वो भी भूल करके बस देह में आसक्त होकर के सारी कुछ को भूल गए। आराम से स्वप्न देखा जी मेरी बूढ़ी मैया आ रही है, मेरी बहन आ रही है और मेरा भैया कह रहा है कि भैया तुम हमको छोड़ करके आ गए, हम बड़े दुख से हैं। वही संसार की सारी जितनी भी बातें हैं वो सब बूढ़े होने तक 90 बरस की उम्र 100 बरस की उम्र में मरने जा रहे हैं, 100 बरस हो गया दीक्षा लिए हुए और वही चीजें आएंगी। क्योंकि इसके लिए शुभ रूप में जत्न नहीं किया, इसलिए सपने में वही चीज आएंगी। गुरु जी से भेंट हुई, कुछ परमार्थिक शिक्षा युक्त बातें या राधा कृष्ण की जो लीलाएं सुनते हैं उनके लिए कभी भी आती नहीं, उनका जीवन बेकार का, हरि कथाओं का कोई भी असर नहीं। आज जिन लोगों को ऐसा होता है, जिसको श्रवण किया उसका मनन किया और दिन रात उसी की चिंता कर, वो जरूर आएगा, अंततः मृत्यु के समय में जरूर आएगा अनायास रूप में। ये हरि कथा का फल, उसको दुख भी स्पर्श नहीं कर सकेंगे, चिंता कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज जिन लोगों ने ऐसा नहीं सुना वो प्रॉब्लम से भरे हुए हैं, कहेंगे पहले प्रॉब्लम को ठीक कर लें तब हरि कथा को मन से सुनेंगे, एकांत में जाएंगे और वहां पर एकांत में कोठरी बनाएंगे, किसी से मिलेंगे नहीं, दिन रात हरे कृष्ण करेंगे, बस ये बस चंदू खाना का ये गप हो जाएगा। चंदू खाना जानते हैं, शराबी होते हैं ना, शराबी मटके में शराब भर करके, ताड़ी जानते हैं ना, शराब नहीं ताड़ी ढाल रहे हैं और गप करे, मैं बादशाह इंद्र कुमार दिल्ली का बादशाह मैं हूं, और वैसा ही गप करते हैं, ऐसे ही स्थिति है। इसलिए इन सब चीजों को सावधानी से समझ बुझ करके भजन करो। अब गोपियां उस भाव में कौन प्रौढ़ अवस्था में, प्रौढ़ प्रेम में, उस पूर्वराज से भी अधिक प्रौढ़ प्रेम में ये गोपियां कह रही हैं, सारस हंस सरस सारस हंस दिहंगा चार गृत हित चेतस करेंगे। सखियो देखो तो इन पक्षियों का कितना सौभाग्य है, इनको कोई मना करने वाला है, कोई बिकने नहीं है। कृष्ण ने स्वच्छंद रूप से बंसी बजाई और उसके शब्दों को सुन करके वेणुनाद को श्रवण करके ये वहां से झट जहां कृष्ण वेणु बजा रहे हैं वहां पर उड़ करके चले आए, अथवा ये समझो कि जहां पर वो सरोवर है उसी के निकट में ही कृष्ण वेणु बजा रहे हैं, और वहीं पर सारे जो इधर उधर तैर रहे थे पानी में और कमल के पराग इत्यादि को मकरंद को ग्रहण कर रहे थे, सब कुछ भूल गए, भूल करके भोग सामग्रियों को भूल करके सरोवर से दूर अवस्थित रहते हैं वो कृष्ण के लिए। पानी में बहुत ही सुंदर मधुर और सुस्वादु कमल की नाभि में वो रहता है पराग, उसको ग्रहण करते हैं। संसार का सुख के साथ में उसकी तुलना लगाओ, बहुत ही मनोरंजक बहुत ही मनोहारी वो चीजें हैं, क्या ये संसार के भोग। जहां कृष्ण के भजन की कोई बात सुनकर के गुरु वैष्णव से और उन सबको त्याग करके उनके समीप आकर के जो भजन करते हैं वो सारस हैं, वो हंस हैं, नहीं तो कौवे हैं, यदि ऐसा नहीं तो कौओं की गिनती। यहां पर कौओं की कहीं भी नहीं आए जो कृष्ण की बंसी सुन करके आए, वो तो डर करके उचक करके देख करके उड़ करके भागेंगे। संख्या में अतीत है, संख्याती सारस हंस और अन्य प्रकार के जितने भी जलचर हैं, विहंग हैं, कृष्ण के चारु वेणु जी को, चारु माने मोहन, चारु माने अत्यंत मधुर, विशेष करके अवरोह और आरोह स्वर से युक्त कृष्ण की मधुर बंसी को सुनकर शायद ये सुनते हैं कि हमें बुला रहे हैं, और सभी सब कुछ छोड़कर सिद्ध चित्त कृष्ण ने बंसी ध्वनि से उनका चित्त चुराया, लेकर के जब चलने लगी बंसी की ध्वनि उसके चित्त को निकाल लिया, उसके हृदय से चलने लगी, तो ये भी पीछे पीछे दौड़ रहे, अपने चित्त को पाने के लिए, अपने हृदय को पाने के लिए वो दौड़ थे, व्याकुल हो गए। प्रथमतः मोह प्रयुक्त इतस्तः भ्रमण करिया, इधर उधर घूमते हैं, और इसके बाद में जिधर में बंसी की आवाज रही ठीक उसी के पीछे 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 वहां पर आते चले आते हैं। और आकर के समीप एत्य माने आकर चित चेत एत्य आकर हरी उपास, जिन्होंने उसके चित्त को हरण कर लिया था उनकी उपासना वो करने लग गए। कैसे उपासना का लक्षण कर रहे हैं हम लोग को भी साधारण उपासना में वो चीजें होनी चाहिए। हम लोग भी भजन की आवाज कहीं से सुन करके वैष्णवों से गुरु वैष्णवों से सुना जय कृष्ण का भजन करना ही जीवन का अंतिम सार है सुन करके एत्य कहां एत्य आकर वैष्णवों का संग उसमें आए। अब हम लोगों को कैसा होना चाहिए उन पक्षियों की भांति होना चाहिए। तीन उनके गुण बतला रहे यत चित्ता जितने भी मानसिक कायिक और वाचिक चेष्टाएं और क्रियाएं हैं जितने भी अखिल व्यापार संसारिक विषयों से हटा दिया इन तीन चीजों के ऊपर में ही ये सब चीजें निर्भर करती हैं। मानसिक मन से इनको देख करके चिंता करते हैं कायिकी माने ये दस इंद्रियां हैं इन दस इंद्रियों के व्यापार को विशेष करके पंच ज्ञान इंद्रियों के भावों को क्या चक्षु कर्ण नासिका जीवा और इससे ही हम माया में आकृष्ट होते हैं या भगवान की तरफ में आकृष्ट होते हैं। इन सब चीजों को संसारिक बातों से संपूर्ण रूप से अलग कर